हरि ओम हरि ओम हरि ओम कथायां पीयूषं प्रवचन कलायां च पटुताम् सुलेखे लालित्यं लसति किल यस्य क्षितितले स्मरामि प्रातस्तं भवजलधिभीतैकशरणम् अखण्डानन्दं श्रीं गुरुवरमहं ब्रह्म परमम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः हरि ओम नारायण 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 सर्वं ह्येतद् ब्रह्म और ये सब ब्रह्म है स्वयं आत्मा चतुष्पाद वही ये आत्मा है और ये चार पादों वाला है अर्थात इस आत्मा को ब्रह्मरूप जानने के लिए चार पादों में इसका विचार करना चाहिए तो तीन पाद तो जागृत स्वप्न सुषुप्ति के हैं उनके अभिमानी के रूप में अथवा उनके दृष्टा के रूप में ये आत्मदेव उपस्थित रहते हैं कहीं जाते नहीं हैं ये जिसको हम मैं बोलते हैं तो इस मैं से व्यक्तित्व यदि निकल जाए तो ये आत्मा ही है लेकिन ये ब्रह्म है ये बात अपने आप समझ में नहीं आ सकती इसके लिए कोई प्रमाण चाहिए अब आत्मा की ब्रह्मता में क्या प्रमाण है तो प्रत्यक्ष प्रमाण तो हो नहीं सकता आजकल तो सबको प्रत्यक्ष के बिना कुछ मानने कोई तैयार नहीं है बोले हमको तो दिखाओ माने आंख से दिख लें कान से सुन लें बोले पुनर्जन्म होता है या नहीं होता है तो कोई मर के जाए फिर लौट के आवे फिर बतावे तब माने तभी यही तो प्रत्यक्ष होगा और क्या तो बोले ये प्रत्यक्ष का विषय नहीं है अर्थात इंद्रियों का विषय नहीं है और जो इंद्रियों का विषय नहीं होता है वो अनुमान का भी विषय नहीं है मन का भी विषय नहीं होता क्योंकि मन तो जो इंद्रियां इन्फॉर्मेशन भेजती हैं मन को इंद्रियां मन तो बस वो ही जानता है उससे अधिक नहीं जानता बुद्धि कल्पना कर सकती है लेकिन वो भी उसका आधार भी ज्ञात ज्ञान ही होता है अज्ञात की कल्पना अत्यंत अज्ञात की कल्पना नहीं होती तो इसलिए अनुमान प्रमाण भी इसमें नहीं चलेगा, अर्थापत्ति अर्थात इन्फ्रेंस जिसको बोलते हैं अर्थात, वो अर्थात भी नहीं चलेगा, क्योंकि तो सब अनुमान के ही स्वरूप हैं। बोले जो आदमी बड़ा मोटा हो रहा है, बोले अच्छा खूब खाता होगा, नहीं हमने तो देख लिया सारे दिन रहकर कुछ नहीं खाता है। तो बोले मोटा है और सारे दिन नहीं खाता है अर्थात रात को खाता है, इसमें से ये अर्थ निकल आया, रात में खा लेता होगा। तो ये अर्थात भी नहीं चलेगा, क्योंकि वो तो अनुमान के से आगे की चीज है। उपमान ब्रह्म कैसा है कि ऐसा है, अब ऐसे को आप जानोगे प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से, तब ना उसकी उपमा दी जाएगी ब्रह्म की कि ब्रह्म ऐसा है नारायण। तो उपमान भी जो है वो भी अनुमान का ही एक हिस्सा है, अर्थापत्ति भी है, अनुपलब्धि है। अनुपलब्धि माने कोई चीज अनुभव में नहीं आ रही है। बोले यहां घड़ा नहीं है, कैसे मालूम है भाई घड़ा नहीं है? बोले घड़ा होता तो दिखाई देता। तो बोले घड़ा पहचानते हो ना, हम तो कहते हैं ये है घड़ा। बोले ना ना ये घड़ा नहीं है। तो घट को पहले पहचानना आवश्यक है, तो वो भी प्रत्यक्ष के बिना सिद्ध नहीं होगा। तो ये पांच प्रमाण तो गए, अब रह गया शब्द प्रमाण। शब्द का मतलब शास्त्र प्रमाण समझ लो। तो आदमी कोई कुछ शब्द बोल दे, बोले हम देख के आ रहे हैं स्वर्ग है, नहीं माना जाएगा, क्योंकि आदमी जो है वो तो आपको धोखा भी दे सकता है, उसका ज्ञान सीमित भी हो सकता है नारायण। तो वो प्रमाण नहीं होता है। ऐसा प्रमाण चाहिए जिसके बारे में संदेह ना हो। तो वो प्रमाण क्या है? बोले हम किताब में लिखा हुआ दिखा सकते हैं। बोले वो किताब भी किसने लिखी है ये बताओ। मैं तो जब वो भी किताब सामने आती है ना, बहुत तारीफ करते हैं लोग, मन का ये बताओ इसका ऑथर कौन है। अगर ऑथर प्रामाणिक नहीं है तो उसकी किताब कैसे प्रामाणिक हो जाएगी ना? अब शंकराचार्य मान लो कोई बात लिखते हैं तो शंकराचार्य अपने विषय में प्रामाणिक हैं, उनकी बात तो समझ में आ सकती है। कोई भी कुछ भी बोल दे लिख दे, बोले ये शंकराचार्य का सिद्धांत है, वो नहीं माना जाएगा। तो शब्द प्रमाण में भी एक तो है कि लिखंत प्रमाण है, आदमी का लिखा हुआ नहीं मानते तो वेद को प्रमाण मानते हैं, क्योंकि ये वेद किसी आदमी के बनाए हुए नहीं है। और बोले ईश्वर ने बनाए हैं तो ईश्वर क्या संस्कृत में ही बनाता है? तो ऐसे लोग बोलते हैं कि अगर तुम इसको प्रमाण मानोगे तो हम कुरान को प्रमाण मानेंगे, हम बाइबल को प्रमाण मानेंगे, क्योंकि वो भी सब यही मानते हैं कि ईश्वर की रचना है। तो वेद प्रमाण इसलिए नहीं है कि वो ईश्वर की रचना है, वो ऋषियों की रचना भी नहीं है, क्योंकि वेद तो अनादि सिद्ध ज्ञान है, वो सृष्टि में हमेशा रहता है। जैसे इस समय यहां रेडियो वेव्स हैं, अब आप अपना रेडियो ट्यून कर लो उसी वेवलेंथ पर। हम छोटे से थे तब सुनते थे कि भगवान श्री कृष्ण की गीता जो है वो अब भी गूंज रही है, अपनी वेवलेंथ उस पर कर लो तो सुनाई पड़ेगी। तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो श्री कृष्ण की वाणी सुनाई पड़ेगी, गीता के जो श्लोक हैं उनके अर्थ में आपकी बुद्धि प्रवेश करने लगेगी यदि आपकी और भगवान कृष्ण की वेवलेंथ एक हो जाए। वक्ता की और श्रोता की वेवलेंथ एक हो जाए तो वक्ता का ज्ञान श्रोता में उतर जाता है। ये गुरु शिष्य का जो संबंध है ना वो ये ऐसे ही है, वेवलेंथ एक करनी पड़ती है। बोले गुरु जी आपकी सब बात मानेंगे मगर ये बात नहीं मानेंगे, तो अभी तुम्हारी वेवलेंथ जो है वो अलग है। आज तो इस बात को कह रहे हो, कल को हमारे ज्ञान को भी कह दोगे कि भाई हम नहीं मानेंगे। इन टोटो वेवलेंथ उसके साथ मिलानी पड़ती है। तो शब्द प्रमाण में भी वेद प्रमाण है, वेद में भी जो भेद के प्रतिपादक वचन है वो प्रमाण व्यवहार के लिए तो है लेकिन परमार्थ के लिए वो भी प्रमाण नहीं है। अब जैसे सर्वम हेतद ब्रह्म, ये सब ब्रह्म है, तो ये भेद वचन नहीं है, ये अभेद वाचक है, सब ब्रह्म ही है, तो ये तो प्रमाण हो जाएगा। अब बोले यहां पुरुष अलग है स्त्री अलग है, उसका ये कर्तव्य है स्त्री का ये कर्तव्य है, जहां भेद को स्थापित करके बात होती है वहां व्यवहार के लिए होता है, वो व्यवहार में प्रमाण है तो उस कानून में तो स्मृतियां ही बदल देती हैं और अब तो सरकार बदल देती है। हिंदू लोग कितनी बार बदला जा चुका। तो परमार्थ क्या है कि एक ही तत्व है सृष्टि में, वही आत्मा है और वही संसार है। ये एकता का प्रतिपादन करने वाले जो वचन है वो महावाक्य कहलाते हैं। तो सर्वम ये तद ब्रह्म, ये सब ब्रह्म है, और अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा भी ब्रह्म है, ये अभेद वचन है, तो ये प्रमाण है। अब इनको सिद्ध करने के लिए वेद की जिम्मेदारी नहीं है, अगर करते हैं वेद तो उसकी कृपा है, नहीं तो ये गुरुओं का काम है कि उस वचन को अपनी युक्ति से आपके मन में बिठावें। यहां तो श्रुति स्वयं ही बिठा रही है। अब इस पर कहते हैं कि हमने मान लो ब्रह्म को जान लिया तो इससे मिलेगा क्या? स्वर्ग को आप काट रहे हो, लोक लोकांतर को आप काट रहे हो, लौकिक सुखों से आप वैराग्य करवा रहे हो, तो मिला क्या? और ब्रह्म भी है तो निर्गुण है, निराकार है, न किसी की सुनता है न, तो ऐसे ब्रह्म को जान करके हम क्या करेंगे? निरर्थक है। ये प्रश्न भाष्य में उठाया तो उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारी जो समस्या है उस समस्या के लिए वेदांत में प्रवेश कर रहे हो तब तो ठीक है, और सिर्फ कौतूहलवश आप वेदांत को समझना चाहते हो कि देखें वेदांत में क्या है, तो उससे वेदांत का रहस्य नहीं खुलेगा। आपके जीवन की कोई समस्या है कि नहीं? मैं सुखी होता हूं, मैं दुखी होता हूं, मुझे मरने का डर लगता है, डर है, आसक्ति मुझको काटती है, व्यवहार में मैं अपने मन के अनुसार नहीं चल सक पाता हूं, असफल होता हूं। कौन दुख चाहता है? दुख आता है। तो अगर इन सब समस्याओं का हल जानना है तब तो वेदांत आपको काम में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो भाष्यकार लिखते हैं कि प्रश्न उठाते हैं कि शश विषाणादि समत्वात् निरर्थकत्वम तरी, फिर तो जैसे खरगोश के सींग हैं होते ही नहीं है, उसको जानने से फायदा ही क्या है, खरगोश के सींग नहीं है तो मिला क्या झंझना। तो बोले देखो सुनो, ये आपको जो सुख दुख और इत्यादि बंधन हो रहा है ये पुनर्जन्म की श्रृंखला के कारण होता है। ये कर्म फिलॉसफी जो है इसको कोई काट नहीं सकता। कर्म का तो हम खंडन कर सकते हैं लेकिन वर्तमान में जो हमको सुख दुख हो रहा है वो हमारे ही किसी किए हुए कर्म का फल है, ये आप नहीं काट सकते। और कठोपनिषद के भाष्य में शंकराचार्य ने लिखा है कि 100 करोड़ कल्प तक कर्म का फल नष्ट नहीं होता। 100 करोड़ कल्प, हम तो समझते हमने कोई गलत काम कर दिया और छिपा लिया तो छिप गए, तो बोले वो दुनिया से तो छिप गया लेकिन वो चित्त में जो अंकित हो गया कि मैंने गलत किया, वो चित्त तो जहां जहां आपका चित्त जाएगा वहां वहां रहेगा। तो ये कर्म का बंधन काटने के लिए है। अब इसमें कल या परसों बताया था कि अविद्या, कामना और कर्म, ये कर्म के फलस्वरूप प्राप्त होते हैं। अविद्या अर्थात आत्मा क्या है हम नहीं जानते, फिर कामना है बीच में, वासना है। हमारी आंख ऐसी क्यों बनी, इनकी आंख ऐसी क्यों बनी, किसी की उंगली लंबी है किसी की उंगली चपटी है किसी की उंगली मोटी है, किसी के हाथ भारी हैं किसी के हाथ हल्के। रामकृष्ण परमहंस देव वो साधकों के हाथों को अपने हाथ में लेकर के ऐसे तोलते थे तो लोग कहते थे ठाकुर क्या कर रहे हो, बोले देख रहा हूं ये विषयी जीव है या साधक जीव है। विषयी जीव होगा तो उसके हाथ भारी होंगे। ऐसा वो उसमें दिखा हुआ है, शरद चंद जी ने जो उनकी लाइफ देखी है। तो उंगलियों को देख के पता चल जाता है कि ये आदमी थिंकर है कि नहीं है, विचारशील है कि या ऐसे ही बस खाया पिया मौज उड़ाया। बैठने से पता चल जाता है, बोलने से पता चल जाता है, हर एक एक्टिविटी में वो जो हमारा कर्म है जो हम करके आए हैं वो झलकता है। तो कर्म के अनुसार होता है। तो ये अविद्या, कामना और कामना के बाद में फिर स्थूल शरीर से फिर कर्म होता है। अब जब आप कामना पूर्वक कर्म करोगे और अविद्या मूल में है, माने मैं करता हूं, ये तो ज्ञान है कि मैं करता हूं और मैं भोगता भी हूं और कामना भी है मुझे, और उस कामना की पूर्ति के लिए कर्म भी कर रहा हूं, तो फल तो उत्पन्न होगा ही उस कर्म से। वो फल कहां जाएगा? अविद्या माने मैं करता भोगता हूं, उसके बाद कामना आई, कामना के बाद कर्म आया, कर्म के बाद फल आया। अब वो फल कहां जाएगा? आगे जाएगा कि लौटेगा पीछे को? वही भोक्ता को ही मिलेगा वो तो वापस। तो अब ये सर्किल कंप्लीट हो गए, फिर वापस भोक्ता में पहुंच गए। अब भोक्ता मजबूत हो गया उसको पा करके, अब वो फिर कामना करेगा और फिर कर्म करेगा और फिर फल उत्पन्न होगा और फिर वो फल भोक्ता को मिलेगा। यही विषय सर्किल जो है चलता रहता है, इसी से ये पुनर्जन्म की श्रृंखला चलती रहती है। अब अगर हमें इसे तोड़ना है, सब समस्याओं का हल यही है कि भैया जो अब तक हुआ सो हुआ, अब आगे ये ना हो। तो अगर इसको तोड़ना है तो क्या करना पड़ेगा कि अविद्या को काटो तो कामना ढीली पड़ेंगे, लेकिन नए कर्म करते रहोगे तो कामना बलवती रहेंगे। तो इधर तो अविद्या को काटो और इधर कर्म को ढीला करो। अरे बुढ़ापे में तो कर्म छोड़ना पड़ता है ना, तो छोड़ भी देते हैं मगर मन में सोचते रहते हैं काश हम कर सकते इस काम को। अब जब बुढ़ापे में छोड़ना है तो अपना कर्तव्य जब तक पूरा होता है तब तक कर लो, उसके बाद छोड़ दो था। तो हल्का तो हो जाएगा ना सूक्ष्म शरीर, और अगर अविद्या नष्ट हो गई भगवत कृपा से कहो, गुरु कृपा से कहो, शास्त्र कृपा से कहो, आत्म कृपा से कहो, यदि अविद्या नष्ट हो गई तो उसकी जड़ ही कट गई। सारा संसार जैसे वो ताश का पत महल बनाते हैं, ताश खेलते थे तो एक ताश के ऊपर दूसरा ताश ऐसे करके महल बना देते, एक पत्ता नीचे से निकाल लो तो सारा गिर जाता। तो ये अहंकार के ऊपर जो है ये सारा टिका हुआ है ये महल। अहंकार माने अविद्या वाला, आविद्या काम। तो ये वेदांत जो है इस आविद्यक अहम के पत्ते को खींच लेता है, बस और कुछ नहीं करता, बाकी तो अपने आप है। भूकंप आएगा तो एवरेस्ट भी गिर जाएगा। पत्ता निकला नीचे से तो सूक्ष्म शरीर भी गया, और कर्म आपने पहले ही छोड़ दिए क्योंकि उसके बिना तो ये निकलेगा, पत्ता निकलेगा नहीं है। तो भाष्यकार देखते हैं कि भले ही तुम्हें लगता हो कि ये तो निरर्थक ज्ञान है, परंतु इस ज्ञान का जो दृष्ट फल है वो है तृष्णा का त्याग, वासना का त्याग। जैसे जैसे हम को ये समझ में आती जाती है कि ये चीज मिथ्या है, ये चीज मिथ्या है, वैसे वैसे उसकी जो वासना है, इच्छा है, वो ढीली पड़ती जाती है। तो पहले भी मैंने सुनाया था कि एक जादूगर ने एक हीरा बनाया, दिखाया, बोले कौन लेंगे इस हीरे को, तो बड़े बड़े लोग बैठे थे, बहुत कीमती है, तो कुछ हाथ नीचे गिर गए। अब जो ज्यादा मालदार थे उनके हाथ ऊपर रहे, बोले ठीक। फिर एक लड़की बनाई उसने, बोले देखो ये मेरी लड़की है, इस लड़की से जो शादी करेगा उसको मैं ये हीरा मुफ्त में दे दूंगा, दहेज में दे दूंगा। बोलो कौन शादी करेगा। अब सबके हाथ नीचे आ गए। अरे वो तो जादू की लड़की लड़की है ही नहीं, उस मिथ्या लड़की से शादी करके कोई क्या करेगा। और जब शादी करने के मिथ्यात्व का निश्चय हो गया तो उस हीरा का भी मिथ्यात्व निश्चय हो गया। अब उस हीरा को क्या करे, हीरा भी जादू का ही था। तो इसी प्रकार से संसार में जितना भी है ये प्रपंच, प्रपंच माने इंद्रियों से जो कुछ भी विस्तार को प्राप्त होता हुआ सा मालूम पड़ रहा है, पची विस्तारे से प्रपंच शब्द बनता है, पांच इंद्रियों के ज्ञान का विस्तार है। संसार क्या है, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, इन्हीं को जितना चाहो फैला लो। अब ये मालूम पड़ गया कि ये सब मिथ्या है, तो ठीक है जो फैला रहे हैं वो फैलाओ। एक महात्मा है ऋषिकेश में, तो मैंने उनसे कहा आप पेपर नहीं पढ़ते हो, बोले मैं नहीं पढ़ता हूं। क्यों, तो उनका जो कमरा है ना वो सड़क के किनारे ही है, तो बोले वो अखबार वाले सुबह आते हैं ना तो जो फ्रंट लाइन न्यूज होती है वो तो बोलते हुए जाते हैं, आज ये मारा गया, आज ये भूचाल आ गया, ये हो गया, वो हो गया, तो वो सुना जाते हैं। फिर जो सत्संग करने लोग आते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि घंटे भर बैठे तो सत्संग ही करते रहेंगे। अरे साहब आज तो अखबार में ये आया है, आधे से ज्यादा अखबार वो सुना जाता है। अब जो कि मैं अखबार पढ़ के क्या करूं, अपना दिमाग और खराब करूं, उनकी तो सुननी पड़ती है क्योंकि मेरे पास बैठे हैं। नारायण, तो ये दुनिया जो विस्तार करना चाहें करें, किसी को मनाही थोड़ी है, क्योंकि अविद्या जो है वो तो जबरदस्ती करा लेती है, उससे कामना उत्पन्न होगी और कामना उत्पन्न होगी तो कर्म होगा और कर्म होगा तो संसार का विस्तार होगा। आपको यदि परमार्थ चाहिए, अपनी समस्या का हल चाहिए, तो इसको संकोच करो, कर्म का संकोच करो और उधर अविद्या पर चोट करो। जब जब कर्तृत्व भोक्तृत्व जगे तब तब एक चोट को मार ही दो, क्योंकि ये मेरा स्वरूप नहीं है, बस इतना ही कहने की जरूरत है। मैं ये नहीं हूं, फिर चाहे उसके अनुसार काम कर लो, मगर उसका मोमेंटम तो खत्म हो जाता है। जो आवेग होता है उसमें कर्म में, वो वासना का आवेग होता है, ज्ञान का आवेग होता है, वो जहां उस पर चोट पड़ी तो उसकी जो तीव्रता है वो खत्म हो जाती है। ऊपर से सीधा आदमी गिरे जमीन पर तो बचेगा नहीं, लेकिन ऊपर से गिरे और बीच में खिड़की के उससे छज्जे से टकरा जाए, फिर दूसरे छज्जे से टकरा जाए, तो चोट भले ही लग जाए लेकिन मरेगा नहीं, क्योंकि उसका आवेग जो है वो बट गया। तो ये जो विचार है ये डंडा मारने जैसा है, तो वो कर्तृत्व भोक्तृत्व ढीला हो जाता है, वासना ढीली हो जाती है और कर्म भी उतना प्रभावी नहीं होता है। तो ना होगा, ये तो इष्ट है हमें, बोले दुनिया कैसे चलेगी। स्वामी महेश्वरन जी ने एक दृष्टांत दिया कि दृष्टांत भी समझाने के लिए, जरा हल्का करने के लिए होता है। वो कहते हैं कि एक आदमी बोला, महाराज मैं तीर्थ यात्रा करने जा, नहीं है, उसकी पत्नी जो थी वो उससे लड़ती थी कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं करते हो, मैं क्या करूं, रोजाना लड़ाई होती। अब वो महात्मा का भगत था, तो महात्मा ने कहा कि अच्छा ऐसा करो, तुम थोड़े दिन तीर्थ में चले जाओ, एक साल लगा जाओ तीर्थ। तो बोले मेरे बिना घर कैसे चलेगा, कि तू जा तो सही, चला गया। अब महात्मा की आज्ञा मान ली उसने, तो महात्मा जी ने फिर अपने भक्तों की मीटिंग बुलाई, बोले देखो हमारा वो भगत जो था वो तो चला गया, अब उसके बच्चे हैं, पत्नी है, तो उनकी व्यवस्था आप लोग देख लो। तो किसी ने कहा ठीक है मैं गल्ला भिजवा दूंगा, एक ने कहा कि मैं कपड़ा भिजवा दूंगा, ऐसे करके सबने बांट लिया उसका सारा काम। अब उसका भी काम बड़े मजे से चलने लगा। अब वो आ गया थोड़े दिन में, तो जब खबर आई कि मैं आने वाला हूं, तो महात्मा जी जो है पहुंचे वहां घर। उसकी पत्नी से कहा कि बहुत बुरी खबर आई है, वो उसका पैर फिसल गया तीर्थ यात्रा में और वो मर गया, और उसका वहीं पे तेरवा कर दिया गया। ठीक है, अब उसका तो सब काम फिट हो गया था, तो उसे कोई ज्यादा दुख नहीं हुआ। फिर आए वो दो चार दिन के पीछे, बोले एक खबर और देनी थी तुम्हें, उस दिन भूल गया मैं, कि वो मरते समय उसकी आत्मा तुम्हारे में रह गई, तो उसकी सदगति नहीं हुई है, वो प्रेत बन गया है। तो अगर आवे प्रेत आत्मा तो आएगी जरूर, वो जब तेरे में मर गई उसकी आत्मा रह गई है, तो उस प्रेत को घुसने मत देना घर में, ख्याल रखना जरा, चले गए। अब वो कोई मरा मुरा थोड़ा ही था, अब वो तीर्थ यात्रा करके आ गया, दिन में आके महात्मा जी को प्रणाम किया। बोले महाराज अब मैं घर जाऊं। बोले नहीं अभी मुहूर्त ठीक नहीं है, रात में जाना था। दिन उसका वही बिता दिया। अब रात में जो घर पहुंचा नीचे से आवाज दी तो ऊपर से वो आई पत्नी उसने, अरे किवाड़ खोलो मैं हूं। बोले हाँ हाँ मैं हूं, हमें महात्मा जी सब बता गए हैं तुम प्रेत हो तुम। बोले जाते हो कि नहीं जाते हो, नहीं तो मैं किसी ओझा को बुलवाऊं ये करूं वो करूं। उसका लड़का भी उसके साथ शामिल हो गया। बोले फिर बोली कि और अगर मैं मान भी लूं कि तुम वही हो तब भी तुम यहां से चले जाओ, जब तक तुम थे तब तक मेरी कोई व्यवस्था नहीं थी, अब तुम नहीं हो तो मेरे सब काम ठीक ठाक हो रहे हैं। तो वो लौट के आ गया महात्मा जी के पास, सब बात सुना दी। महात्मा ने कहा कि मैं तो पहले ही कहता था, तू ही नहीं मानता था कि मेरे बिना कैसे चलेगा। अरे दुनिया कोई खाली नहीं होती है, ये दुनिया ऐसे ही चलती जाती है। एक जगह वैक्यूम होता है ना तो आसपास की हवा जो है उसको भरने के लिए तुरंत घेर लेती है। सबका प्रारब्ध है, चार जने एक जगह रहते हैं तो ये अभिमान करना गलत है कि मैं चार जनों का पालन पोषण कर रहा हूं। चार के प्रारब्ध मिलकर के होते हैं, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक आदमी का प्रारब्ध सबको गड़बड़ कर देता है, और अगर वो मर जाए तो फिर बाकी तीन के प्रारब्ध अच्छे हो जाते हैं। तो ये सृष्टि तो ऐसे ही चलती रहती है, इसमें से बस अपना ये वासना का जो पत्ता है अहंकार का अविद्या का, इसको निकाल लो, कर्म को ढीला कर दो, यही वेदांत ज्ञान का फल है। इसको लोग मानेंगे नहीं, ये शंकराचार्य जानते हैं। बोले मगर आप अगर आप घुसोगे इसमें तो मैं ब्रह्म हूं ये जाने बिना आप रह नहीं सकते, और जब मैं ब्रह्म हूं तो फिर मुझे क्या चाहिए, क्या पाकर के मैं कृतकृत्य हो जाऊंगा। कुछ मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो भी ठीक है, लेकिन पाकर के मैं कृतकृत्य हो जाऊंगा, धन्य धन्य हो जाऊंगा, ये जो मन में है ये वासना है, सच्चाई नहीं है। नारायण, अब इस मंत्र में प्रवेश करते हैं। दूसरा प्रश्न ये है कि ये सब ब्रह्म है तो ब्रह्म में ये सब किस रूप से है। जैसे मान लो मैं इस फूल को देखता हूं तो फूल तो ये सबके अंतर्गत आ गया, सबका हिस्सा है फूल। अब श्रुति कह रही है कि ये ब्रह्म है तो क्या चीज ब्रह्म है भाई, इसमें क्या चीज है जो मैं कहूं कि ये ब्रह्म है। तो विचार सागर या और प्रक्रिया ग्रंथ जो है उनको पढ़कर बोलते हैं कि ये नाम रूप इसमें मिथ्या है और ये अस्थि भाति प्रिय इन रूपों से ये ब्रह्म ही है। अस्थि माने सत और भाति माने चित और प्रिय माने आनंद, तो सच्चित आनंद तो इसमें भरा ही हुआ है। कितना भी करो फूल में तो कर लोगे सच्चित आनंद, जरा सांप में करके देखो। और यहां तो कह रहे हैं सर्वम हेतद ब्रह्म, तो लेकिन जब हम रस्सी में सांप देखते हैं और डर के भागते हैं और तभी कोई ये कह दे कि डरो मत यहां सांप नहीं है रस्सी ही है, तो डर तो खत्म हो जाता है ना, भले ही हमें रस्सी का ज्ञान ना हो, फिर वेट करना पड़ता है कि कब प्रकाश हो कब रस्सी दिखाई पड़े, और जब रस्सी दिखाई पड़ जाती है तो हमेशा हमेशा के लिए डर खत्म हो जाता है। ऐसे ही जब वेदांत सुनते हैं नारायण। और ये सुनते हैं कि ये तो सब अध्यस्त है संसार के जो कुछ भी है इन टोटो, ऐसा नहीं कि नाम रूप मिथ्या है और बाकी सब सच्चा है। ये पूरा का पूरा किसी चीज में दिख रहा है। स्वप्न में क्या फूल नहीं दिखता? भावराज्य में क्या फूल नहीं दिखते? मनोराज्य में क्या फूल नहीं दिखते? वहां क्या मटेरियल है? लेकिन अपनी सत्यता, अपनी अस्तित्व होना, अपना चित्ता ज्ञान और अपने आनंद प्रियता, वो पहले हम डाल देते हैं फिर उसी का भोग करते हैं। जैसे बड़ा आदमी कहीं जाता है ना, तो पहले उसके वो आते हैं हर कार्य, बोले यहां कहां बैठेंगे, क्या खाएंगे, मेनू डिसाइड करते हैं, फिर उसको चक चक के देखते हैं कि कहीं इसमें जहर वहर तो नहीं मिला हुआ। जब सब ओके हो जाता है फिर वो नेताजी आके उसको भोग लगाते हैं ना। तो ये आत्मा तो किसी का भोग ही नहीं लगाता, असंग है। अगर ये भी भोग लगाने लगे तो लोग भोग ही लगाना बंद कर दें। ये तो लड़ाई हो रही थी बिहारी जी के मंदिर में पंडित से, मैं सुनने लगा मैंने क्या किस बात पर लड़ाई हो रही थी। तो भगत कह रहा था मैंने 1 किलो प्रसाद दिया था, तेने 1 उसमें से पेड़ा वापस किया है। तो बोले भोग ही क्यों लगाया फिर तेने, पूरा 1 किलो ही ले जाता। कि नहीं वापस तो जो भगवान थोड़ी कोई खाते हैं, तुम लोग रख लेते हो, ऐसे बोल रहे हो। तो भगवान खाता नहीं है, यद्यपि गीता में ये कहते हैं अश्नामी मैं खाता हूं। तो वहां मधुसूदन सरस्वती जी महाराज ने भी यही लिखा है कि ऐसे नहीं खाता हूं जैसे मनुष्य खाता है। देवताओं का खाना जो है वो सिर्फ देखना ही उनका भोग होता है। बड़े बड़े महात्मा जो होते हैं जिनको रोग वोग होता है ना, उनके सामने मिठाई रखो, बोले हाँ ठीक है बांट दो भाई बांट, बस हो गया उनका भोग इतना ही है। कोई खाना स्थूल खाना ही भोग नहीं होता है। तो आत्मा तो सिर्फ उपलब्धा है, देखता है, साक्षी है। इतने से संतुष्ट हैं कि नहीं? अगर संतुष्ट हैं तब तो आप अपने को साक्षी मानना, नहीं तो भोगता ही मान लेना, वरना दुखी हो गए। अरे अच्छे भले भोगता थे, अब साक्षी मानने लगे, अब कुछ खाने का मन ही नहीं करता। उपद्रष्टा हनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परः। महाराज श्री ने इसका बड़ा इसी संदर्भ में मांडुक्य के संदर्भ में अर्थ किया है। बोले उपद्रष्टा है ये तो विश्व विराट के रूप से उपद्रष्टा है, अनुमंता बोले तेजस हिरण्य गर्भ के रूप से अनुमंता है, जो आता जाता सो ही देखता जाता, और भर्ता भोक्ता महेश्वर सुषुप्ति का जो प्राज्ञ ईश्वर है वो भर्ता भोक्ता महेश्वर है। ये 3 पाद हो गए, और चौथा पाद परमात्मेति चाप्युक्तो, ये चौथा पाद इस यही परमात्मा देहेस्मिन् पुरुषः परः, इसी देह में ये परम पुरुष अर्थात परमात्मा। तो ये ब्रह्म में सारा संसार ऐसे ही दिख रहा है जैसे रस्सी में सांप दिखता है, सीपी में चांदी दिखती है, सूर्य की रश्मियों में जैसे जल दिखता है, ऐसे ही ब्रह्म में ये जगत दिख रहा है। और ये शरीर कहां दिख रहा है? ये आत्मा में दिख रहा है। तो जैसे ब्रह्म में जगत दिखता है, ऐसे ही आत्मा में ये शरीर दिख रहा है। अब ये मैंने अलग अलग करके बताया। अब कहते हैं कि जो आत्मा है सोई ब्रह्म है, से अयम आत्मा, वो ब्रह्म आत्मा है, आत्मा ब्रह्म है। तो इसका मतलब है कि मुझ में ही ये जगत दिख रहा है और मुझ में ही ये शरीर दिख रहा है। शरीर तो जगत का ही हिस्सा है, इसको अलग क्यों करते हैं? अब हीरा आपके पास है, पहचानते नहीं है, तो जो उसकी गैर पहचान कर रखी है, उस गैर पहचान को हटा दो तो हीरा तो है ही अपने पास। एक महात्मा ने एक दृष्टांत सुनाया था। एक आदमी मर गया, सेठ था। अब उसके बच्चे का व्यापार चला नहीं थी तो पैसे की तंगी हो गई। तो पिताजी के कोई मित्र थे तो उनसे उसने कहा कि भाई बड़ी समस्या है, क्या करें? अब पिताजी भी कहीं कुछ नहीं छोड़ गए तो बोले ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं तो आपके पिताजी का दोस्त, तो मुझे मालूम है जरूर कुछ ना कुछ होगा। बोले अच्छा कहां लिखा है? कि कोई डायरी तो है नहीं उनकी। बोले भाई खाते लाओ। सारे पुराने भाई खाते मंगवाए और वो लगा दिए उसने, आदमी ने, मित्र ने अपने आदमी लगा, देखो कहीं लिखा हो तो। अब एक जगह लिखा था कि वरांडे के उस कोने से इतने फीट पर और जमीन में इतने नीचे एक इतना सोना, दस ने, हाँ 10 किलो सोना गड़ा, या और ज्यादा होगा, 10 तो मैंने कम, मतलब 50 किलो सोना बड़ा गड़ा हुआ। अब वो आया और लड़के के पास, बोले देखो मिल गया, मैं कहता था ना खुदवाओ इसको। खुदवाया, अब जितना खोदना था खोदा तो मिल तो गया, वो बक्सा तो मिला, बड़ा मोटा ताला लग रहा था उसमें और बिल्कुल काला बक्सा था। निकाला गया, बोले कि इसके इतना मोटा ताला लगाया है तो वो 50 किलो सोना इस बक्से के भीतर ही होगा। तोड़वाया ताला तो कुछ नहीं निकला, उसमें खाली था। तो बोले चाचा जी इसमें तो कुछ है ही नहीं। तो बोले मुझे सोचने दो भाई, ऐसा झूठ तो नहीं दिख सकते हो। तो जो सोना साफ करते हैं ना, उसको बुलाया और उसको बोला कि देखो जरा ये बक्सा काई का बना हुआ है। उसने जरा सा खुर्चा कोना कसौटी पर देखा, बोले ठीक है इसे तो सोना है। अब महाराज सफाई करी उसकी तो कुंदन जैसा चमकने लगा, हो तराजू पर रख दिया 50 किलो। तो मित्र बोला मिल गया सोना, के कहां है? कि यही सोना है नारायण। इसके भीतर सोना है, ऐसा नहीं है, यही सोना है, लेकिन हम इसको सोना मान कब रहे थे? हम तो इसे बक्सा मान रहे थे। तो ये तो जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति है, इसके भीतर ये जो विश्व तेजस प्राज्ञ है, बोले इसके भीतर विश्व तेजस प्राज्ञ है नारायण। फिर इस विश्व के भीतर देखना है कि उसमें आत्मा होता होगा कोई। अरे बोले ये सब कुछ नहीं है, ये एस सच सोना ही है, सर्वम ये तद ब्रह्म। तो हमने जो सोने की पहचान बना रखी है, उस पहचान को हटावे और जो शास्त्र की पहचान है उससे देखें तो सब परमात्मा ही है। हम रोजाना अपने शरीर को गाली दें, ये तो पंचभूतों का है, ये तो फलाना है, ये तो ढम का है, तो उस गाली देने से कोई आत्मबोध थोड़ी हो जाएगा। शरीर को जो गाली जैसी बात होती है वो इसलिए होती है कि शरीर से पहले अपने आप को अलग करें, अलग करने के लिए है। वास्तव में अलग नहीं होते हैं, लेकिन जो इसके साथ हम मिल गए हैं वो मिलापना जो है उसको अलग करने के लिए हम ये सारा वेदांत में होता है विचार। तो अब देखो, नान्तप्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम, तो कैसे उसका निषेध कर। मैं कल यही बात छोड़ी थी कि नन्ना कहना सीखो। अब इसमें आप देख लेना कितने नन्ना हैं सातवें मंत्र में। देखो, नान्तप्रज्ञम एक, न बहिष्प्रज्ञम, नोभयता प्रज्ञम, न प्रज्ञान घनम, न प्रज्ञम, न अप्रज्ञम, ये तो छह तो नन्ना ही हो गए। और आगे फिर अ अ करके बोलेंगे, जो शुरू में अ लगता है उसका अर्थ भी नन्ना ही होता है। अदृष्टम अर्थात न दृष्टम, अदृष्टम, अव्यवहार्यम, अग्राह्यम, अलक्षणम, अचिंत्यम, अव्यपदेश्यम, बारह हो गए। और फिर एक आत्म प्रत्यय सारम अर्थात अनेक प्रत्यय सारम न, एकात्म प्रत्यय सारम शांतम अर्थात अशांतम न, प्रपंचोपशमम अर्थात प्रपंच विस्तारो न, शांतम शिवम प्रपंचोपशमम शांतम शिवम अद्वैतम, फिर आकार आ गया। ये हो गए कितने, सोलह नन्ना है इसमें। चतुर्थम मन्यन्ते, इसको चौथा मानते हैं, अर्थात एक दो तीन के बाद जो चार की गिनती है वो नहीं है, एक दो तीन में रहता हुआ तीन से जो विलक्षण है इसलिए उसको चौथा बोलते हैं। चतुर्थम मन्यन्ते, स आत्मा वही है आत्मा, स विज्ञेय, उसी को जानना चाहिए, वो जानने योग्य है। इसको भाष्यकार ने कहा कि ये निषेध विज्ञान है, निषेध विज्ञान रूप प्रमाण है। जैसे मान लो कोई जार है, जार न सही, ऐसी मोमबत्ती जल रही है और उसके ऊपर लोहे का जार रख दिया हमने, तो उसका प्रकाश फैलेगा नहीं, दिखता भी नहीं है बाहर से। किसी ने कहा इसके भीतर प्रकाश है मोमबत्ती, बोले दिखाओ, तो बोले जार हटाओ, तो जार हटाया, तो बोले प्रकाश दिखाओ, क्या अंधा है क्या? अरे वो तो जार हटाते ही प्रकाश दिखने लगा, अब और कौन सा मैं प्रयत्न करूं कि ये प्रकाश दिखने लगे। ऐसे ही जहां जहां अनात्मा में आत्मा की बुद्धि हो रही है वहां वहां से जैसे ही बुद्धि हटी तैसे ही आत्मा ही वो अनात्मा के रूप से दिख रहा था, सोना ही बक्स के रूप में दिख रहा था नारायण। अंतःकरण शुद्ध नहीं था इसलिए मालूम नहीं पड़ती थी, जब चमक आ गई अंतःकरण में बुद्धि में तो दिखने लगा। तो ना अब कहते हैं, अब जरा ये तो इंट्रोडक्शन बहुत लंबा हो गया। नान्तःप्रज्ञम, ये आत्मदेव जो है ये अंतःप्रज्ञ नहीं है, अंतःप्रज्ञ माने भीतर की ओर बुद्धि जिनकी हो, ऐसा नहीं है। ये कौन थे सज्जन जो जिनकी भीतर की ओर बुद्धि थी? तेजस था ना। स्वप्न स्थान ये तेजस है। तो बोले तेजस आत्मा जो है वो तेजस के रूप में है तो सही, लेकिन तेजस आत्मा नहीं है। फिर सुन लो, आत्मा तेजस के रूप में है तो सही, लेकिन तेजस आत्मा नहीं है, क्योंकि इसमें प्रज्ञा मिली हुई है। जैसे आप अपने दर्पण में अपना मुंह देखें तो क्या कहोगे कि दर्पण में जो प्रतिबिंब है ये मैं हूं, यही तो बोलोगे ना देख करके। मगर असलियत क्या बोलोगे कि ये जो प्रतिबिंब दिख रहा है ये मैं जैसा तो है लेकिन मैं नहीं हूं, यही बोलेंगे ना। तो ऐसे ही ये जो तेजस है या हिरण्यगर्भ है ये आत्मा या ब्रह्म जैसा तो है लेकिन ये आत्मा या ब्रह्म नहीं है, ये अस्वीकार करना है। इसमें ऐसा भी नहीं है कि ये पूरा का पूरा ऐसा नहीं है और कुछ होगा, ये विभाग नहीं हो सकता है ब्रह्म में, आधा जानते हैं आधा नहीं जानते। नान्तः प्रज्ञम, इसकी बुद्धि भीतर की ओर नहीं, तो कहां बाहर की ओर होगे? कि न बहिष् प्रज्ञम, बाहर की ओर तो विश्व की थी बहिष् प्रज्ञ, विराट की थी। तो बोले हां वो ब्रह्म है तो सही हो, लेकिन वो ब्रह्म नहीं है। ब्रह्म तो वो है, जैसे मिट्टी तो घड़ा है लेकिन घड़ा मिट्टी नहीं है। मिट्टी तो घड़े के बिना भी रहती है लेकिन घड़ा मिट्टी के बिना नहीं रहता। ऐसे ये विश्व तेजस प्राज्ञ जो हैं ये आत्मा के बिना नहीं रहते हैं, लेकिन आत्मा विश्व तेजस प्राज्ञ इनके बिना भी रहता है, यही विलक्षणता है। इसी अर्थ में इनका निषेध अस्वीकार करना है। नान्तः प्रज्ञम न बहिष् प्रज्ञम नोभयता प्रज्ञम, और थोड़ी सी हमारी प्रज्ञा बाहर हो थोड़ी सी भीतर हो तो बोले नहीं उभयता प्रज्ञ भी नहीं है, न प्रज्ञान घनम, सुषुप्ति वाला भी नहीं है। ईश्वर में भी प्रज्ञान घन रहता है वो भी नहीं है। न प्रज्ञम न अप्रज्ञम, कोई जिक्री मत करो प्रज्ञा करना। क्या है ज्ञान ही ज्ञान है, तो कुछ चाहे उसका नाम प्रज्ञा रख लो चाहे आत्मा रख लो। हमारे महाराष्ट्र ने भी कहा है और स्वामी महेशानंद जी ने भी कहा है, बोले बताना मत इसको, पहले पहले मत बता देना। तो अभी तो नहीं बताऊंगा मैं। आखिर के दिन बताऊंगा। हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।